सिद्धेर्य ॐ नमः सिद्धेर्य ॐ नमः सिद्धेर्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् जय धवलंगते नाउरियसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अनंजनो नामो चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ऊपर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी भगवान के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। पहला अधिकार जो है अर्थाधिकार पेज जो 272 नाम का, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। हम अभी पृष्ठ संख्या 149 पर आ गए हैं, 149। यहाँ विशेषार्थ पढ़ेंगे अभी हम। पहले तो पहली गाथा तो नाम बताया था, उसी के आधार से उपक्रम के 5 प्रकार बताए थे। उसमें से जो अर्थाधिकार है, कौन सा विषय आने वाला है, कितनी गाथाओं में है, वो स्वयं कषाय प्रावृतकार यहाँ लिख रहे हैं गुणधर भट्टारक। तो उन्होंने उनके नाम भी बताए थे, वो हमने विस्तार से देखे, अभी विशेषार्थ में फिर देखते हैं। 15 अर्थाधिकार, यानी जो कषाय पाहुड़ के 180 गाथा सूत्र लिखे हैं, उसमें 15 अर्थाधिकार होते, चैप्टर्स 15 अलग अलग होंगे। उनके नामों का निर्देश करने वाली पेज 272 इत्यादि 2 गाथाओं में अंतिम पद अद्धा परिमाण निर्देशो है। इससे कितने ही आचार्य इसे 15वां स्वतंत्र अर्थाधिकार मान लेते हैं। पहली गाथा में उन्होंने 4 नाम बताए और वहाँ 5 अर्थाधिकार बताए, कोई वहाँ 4 मानकर और ये अलग से 15वां मान लेते हैं। पर यदि दर्शन मोह की उपशामना और दर्शन मोह की क्षपणा ये 2 स्वतंत्र अधिकार रहते हैं, तो अधिकारों की संख्या 16 हो जाती है। इसलिए वे आचार्य अधिकारों की संख्या 16 न हो जाए इस भय से दर्शन मोह की उपशामना और दर्शन मोह की क्षपणा इन दोनों को मिलाकर एक ही अर्थाधिकार मान लेते हैं, क्योंकि स्वयं आचार्य ने बताया था 15 अर्थाधिकार है, इसलिए उन दोनों का एक इकट्ठा गिन के दूसरा एक बताते हैं। पर यदि इस व्यवस्था को ठीक माना जाए तो गाहा सदैव असीदे इस प्रतिज्ञा वाक्य के अनुसार अद्धा परिमाण का निर्देश करने वाली 6 गाथाएं भी 180 गाथाओं में आ जानी चाहिए। उन्होंने स्वयं बताया था 180 गाथाएं, और ये जो अद्धा परिमाण वाली जो 6 गाथाएं वो अलग से है, तो उसमें आनी चाहिए थी यदि स्वयं आचार्य गुणधर लिखते तो, क्योंकि कषाय पाहुड़ का अद्धा परिमाण निर्देश नामक 15वां स्वतंत्र अधिकार हो जाने से उसका कथन करने वाली गाथाओं का भी कषाय पाहुड़ के विषय का प्रतिपादन करने वाली 180 गाथाओं में समावेश होना योग्य ही था। पर जिसलिए उनका 180 गाथाओं में समावेश नहीं किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि अद्धा परिमाण निर्देश नाम का 15वां स्वतंत्र अधिकार नहीं है, किंतु वह 15 अधिकारों में सर्वसाधारण अधिकार है। यानी सभी में वो जो कहा जहाँ जिसका विषय होगा वहाँ उसका कथन है, उसको स्वतंत्र रूप से अधिकार रूप से नहीं लिया है। इसलिए अद्धा परिमाण निर्देशो इस पद के द्वारा अंत में उल्लेख किया है। इस प्रकार विचार करने पर दर्शन मोह की उपशामना और दर्शन मोह की क्षपणा ये 2 स्वतंत्र अधिकार है, यह सिद्ध होता है। अभी तक हमने कितने देखे दर्शन मोह की उपशामना और क्षपणा, इसको कितना नाम दिया था याद है? हाँ, 11 हो गया। देखो शुरू से देखते हैं 143 पृष्ठ पर, ये नीचे का समाधान है, वहाँ पहली लाइन में देखो, या उसके बाद भी हमने बहुत बार देखा। हाँ 147, नहीं नहीं उसकी बात नहीं, मैं पहले से गिना रही हूँ। हमने वहां देखा था, देखो पेज दोष विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, वहां तो बंधक कहा है, उसमें से पांच कैसे होते उसके बहुत विस्तार से वर्णन किया, या तो चौथा अलग ही है, उसमें किसको किसको लिया था, प्रदेश विभक्ति, झीणा झीण और स्थित्यंतिक, वेरी गुड स्थित्यंतिक, और बंधक में ही बंध और संक्रम, ये पांच अर्थाधिकार हुए। फिर छठे सातवें में उन्होंने बताया वेदना, उपयोग सातवा था, हाँ चतुस्थान और व्यंजन, ये चार हो गए, यानी वो पहले पांच, ये चार नौ हो गए, दर्शनमुख की उपशामना और दर्शनमुख की क्षपणा 10 और 11, यहाँ 10वां अर्थाधिकार लिखा है ना उन्होंने, ये 11 नाम हो गए यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर की गाथा, जो गाथा सूत्र है उसको पढ़ेंगे। लद्धिय संजमा संजम सलद्धिता चरितस दोसुविएका गाहा अठे उवसामन धम्मी। संयमा संयम की लब्धि 12वां अर्थाधिकार है, इसको लब्धि कहते, जैसे सम्यक की लब्धि, संयमा संयम लब्धि, संयम लब्धि, तथा चरित्र की लब्धि, यह सब जगह चरित्र ही लिया है परंतु चारित्र हम कहते हैं हिंदी में, चारित्र की लब्धि 13वां अर्थाधिकार है। 13वां हुआ ये 12 और 13 नंबर के। इन दोनों ही अर्थाधिकारों में एक गाथा आई है तथा चारित्रमुह की उपशामना नाम के अर्थाधिकार में 8 गाथाएं आई है। चारित्र की लब्धि में ही वो उसकी उपशामना आदि का जो कुछ वर्णन होगा, ये उसकी लब्धि का वर्णन तो एक गाथा में है और क्षपणा की बात अलग से बताएंगे। हाँ ये आगे वाला, ये 15वां हो जाएगा, 13, 14वां हो जाएगा। हम पहले नंबर देखते हैं ना, अर्थ कल हमने जो 80 पेज के आगे पढ़ा था, देखो 80वें पृष्ठ पर, हाँ उपशामना और क्षपणा अलग अलग किया है उन्होंने। प्रस्तावना का 80 पेज, ये जो इसके संबंध में पहले हम पढ़ लेते प्रस्तावना में, फिर यहां पढ़ेंगे। यानी चारित्रमों की जो उपशामना है उसको 14वां नंबर दिया है और चारित्रमों की क्षपणा वाला 15 नंबर है, वहां एक ही हुआ है 81 पृष्ठ पर, वहां एक 5 लिख देना एक के आगे। प्रस्तावना पेज नंबर 81, चारित्रमों की क्षपणा जहां हेडिंग है उसके ब्रैकेट में एक लिखा है, उसके बदले 15 चाहिए। हाँ अभी हम वहीं से पढ़ेंगे 80 नंबर के पृष्ठ पर, प्रस्तावना का 80। यहाँ पढ़ते देखो, देश वीरज जहां लिखा है 12वां नंबर, वहां पढ़ेंगे। इस अधिकार में संयमा संयम लब्धि का वर्णन है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव से, देखो चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का उदय था तो जीव के परिणाम संयमा संयम वाले नहीं थे, पूर्ण रूप से अविरति थी वहां पर, अनुमात्र भी संयम के परिणाम नहीं थे, अनुमात्र भी यानी वो तो अनुव्रत भी धारण नहीं करता था, तो इसलिए कहते उसका जब अभाव हो गया है ये निमित्त की भाषा में बताते हैं। अप्रत्याख्यान आवरण कषाय के उदय के अभाव से देश चारित्र को प्राप्त करने वाले जीव के जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उसे संयमा संयम लब्धि कहते हैं। ये लब्धि जीव के परिणाम है, तो लब्धि कब कहेंगे? जीव के वैसे परिणाम हो गए तब उसको लब्धि कहेंगे। जो उपशम सम्यक्त्व के साथ संयमा संयम को प्राप्त करता है उसके तीनों ही करण होते हैं। हमने देखा है बहुत बार कि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम उपशम सम्यक्त्व के साथ पहले से चौथे में जा सकता है, कोई पहले से डायरेक्ट पांचवें में जाएगा, कोई पहले से डायरेक्ट सातवें में भी जा सकता है। तो ये वहां उसके तीन करण होते हैं, किंतु उसकी विवक्षा यहां नहीं की है क्योंकि उसका अंतर्भाव सम्यक्त्व की उत्पत्ति में ही कर लिया गया है। दर्शन मोह की उपशमना वाला अभी हमने ऊपर जो 10वें नंबर का जो हेडिंग देखा था अर्थाधिकार, उसमें वो उपशमना का विधान पूरा तीन करणों का बताया है, इसलिए यहां फिर दोबारा उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अतः उसे छोड़कर जो वेदक सम्यक दृष्टि या वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि, वेदक प्रायोग्य ने वेदक होने योग्य ऐसा मिथ्या दृष्टि अभी होने वाला है, संयमा संयम को प्राप्त करता है उसका प्ररूपण इस अधिकार में किया है। उसके प्रारंभ के दो ही करण होते हैं, तीसरा अनिवृत्ति करण नहीं होता। उपशमना के साथ जो करेगा उसके तो तीनों करण होंगे, परंतु जो अभी चौथे वाला क्षोपशम है और वो पांचवे में जाने वाला है, या मिथ्या दृष्टि है सादी मिथ्या दृष्टि और वो वेदक के साथ जाएगा, तो वहां दो करण में, क्योंकि वो अभी अभी नीचे आया और फिर दोबारा जाता है, तो दो करण में क्षोपशम सम्यक्त्व के लिए क्षोपशम के साथ जब चढ़ता है ऊपर तो दो करण में हो जाता है, तो तीसरा अनिवृत्ति करण नहीं होता। अतः इस अधिकार में दोनों करणों में होने वाले कार्यों का, वहां क्या क्या होती है, विशुद्धि कैसी बढ़ती है और वो स्थिति कांडक अनुभव कांडक जो कुछ बातें वहां होगी उसका यहाँ वर्णन होगा। ये कार्यों का यानी उन जो परिणामों का करणों का यहाँ विस्तार से विवेचन किया गया है। इस अधिकार में केवल एक ही गाथा है, एक गाथा में ये अधिकार है पूरा, और विस्तार से विवेचन तो बहुत आने वाला है। एक सपना सार में ये सारे विषय हो चुके अपने हैं, और फिर अपने जरा रिवीजन हो जाएगी। संयम लब्धि 13वां नंबर, जो गाथा 12वें देशविरत अधिकार में है वही गाथा इस अधिकारों में भी है। संयमा संयम लब्धि के ही समान विवक्षित संयम लब्धि में भी दो ही करण होते हैं जिनका विवेचन संयमा संयम लब्धि की ही तरह बतलाया है। अंत में संयम लब्धि से युक्त जीवों का निरूपण आठ अनियोग द्वारों से किया है। अनियोग का अनुयोग, अनुयोग द्वार कहते हैं ना, अनुयोग चाहिए। यानी वो उसमें आठ अलग अलग पद्धति से उसका और विस्तार से विवेचन होगा। ये क्या आने वाला है वो सब है, कौन कौन सी बातें आएगी विस्तार से। चार अनुयोग की यहाँ बात नहीं होती है, जब आठ अनुयोग द्वार कहते हैं जैसे सत है वो है बताएंगे, फिर संख्या बताएंगे, काल बताएंगे, अंतर बताएंगे, क्षेत्र बताएंगे, स्पर्श बताएंगे, अल्प बहुत्व बताएंगे, भाव बताएंगे, तो ये ऐसे अनुयोग द्वार होते हैं उसका विस्तार से विवेचन, यानी उसके चैप्टर्स, और उसको भी अनुयोग द्वार कहते हैं। ये चार अनुयोग वाली बात यहाँ नहीं है। हाँ, चारित्र मोह की उपशमना, ये 14वें नंबर का, इस अधिकार में आठ गाथाएं हैं। पहली गाथा द्वारा उपशमना कितने प्रकार की है, किस किस कर्म का उपशम होता है आदि प्रश्नों का अवतार किया गया है। अवतार यानी प्रश्न उठाकर फिर उसको समझाएंगे। दूसरी गाथा के द्वारा निरुद्ध चारित्र मोह प्रकृति की, निरुद्ध है ने जिसका भी रोक दिया गया है, ऐसे चारित्र मोह की प्रकृति की स्थिति के कितने भाग का निरुद्ध है ने अभी वो उपशमित करने जा रहे ना, रोका है उसका, हाँ निरोध किया है, वो प्रकृति की जो स्थितियां हैं अंदर, वो स्थिति के कितने भाग का उपशम करता है, कितने भाग का संक्रमण करता है, कितने भाग की उदीर्णा करता है, आदि प्रश्नों का अवतार किया गया है। चारित्र मोह के क्रम से जो उपशमना चलेगी तो उसमें भी एक समय में पूरा का पूरा उपशमित नहीं होता है, एक एक समय करके अंतर्मूर्त तक कार्य चलेगा। और जब वो उपशमना हो रही है तो कितने परमाणु नीचे भी आएंगे, अंतर के नीचे पहली स्थिति में आएगी, तो उसका जो वहाँ जब उसकी चर्चा आएगी तब उसका विस्तार से समझेंगे। अभी हम तीसरी गाथा के द्वारा निरुद्ध चारित्र मोहिनी प्रकृति का उपशम कितने काल में रहता है, उपशम करने पर संक्रमण और उदीर्णा कब करता है, आदि प्रश्नों का अवतार किया गया है। चौथी गाथा के द्वारा आठ करणों में से उपशामक के कब किस करण की विच्छित्ति होती है, आदि प्रश्नों का अवतार किया गया है, जिनका समाधान चूर्णी सूत्रकार ने विस्तार से किया है। इस प्रकार इन चार गाथाओं के द्वारा उपशामक का निरूपण किया गया है और शेष चार गाथाओं के द्वारा उपशामक के पतन का निरूपण किया गया है। ये आठ करण अभी जो ये उपशम करना है, संक्रमण आदि जो कुछ है, वो कौन कौन से हो गए, कौन से नहीं हो गए, उसकी बात वहां करेंगे। उपशमित है तो उसमें कौन कौन से करण है, कर्मों की कौन कौन सी अवस्था, कहां पर उसकी विच्छित्ति होगी, उसकी बात करेंगे। हाँ, उसको करण कहते हैं। हम दस करण कहते हैं ना, बंद सत्ता उदय उदीर्णा वगैरह, हाँ, तो उसमें आठ करणों की बात है। शेष चार गाथाओं के द्वारा उपशामक के पतन का निरूपण किया गया है। पतन कहने ये चढ़ते हुए और फिर उतरते हुए, उसको पतन कहेंगे। नीचे उतरते हुए भी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, क्या होता है, गौण श्रेणी आदि होती है, कितनी क्या बातें होती है, उसके की चर्चा होगी उसमें, जिसमें प्रतिपात के भेद आदि का सुंदर विवेचन है। प्रतिपात यानी नीचे आना, उसमें भी जो कोई भेद है उसका विवेचन होगा। जैसे अभी हमें जो पता है, जो कोई लोभ के उदय के साथ चढ़ा है, कोई क्रोध के उदय के साथ जो चढ़ा था, उतरते समय कैसी क्या बातें होगी, उसकी विस्तार से चर्चा होगी। जब चर्चा आएगी तब हम देखेंगे ना। हाँ, अभी तो हम क्या विषय आने वाला है, इतनी बातें अर्थाधिकार बता रहे हैं यहाँ पर। अब 15 नंबर चारित्र मोह की क्षपणा, यह अधिकार बहुत विस्तृत है। इसमें क्षपक श्रेणी का विवेचन विस्तार से किया गया है। अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के बिना चारित्र मोह का क्षय नहीं हो सकता। अतः प्रारंभ में चूर्णी सूत्रकार ने इन तीनों करणों में होने वाले कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। 9वें गुणस्थान के अवैध भाग में पहुंचने पर जो कार्य होता है उसका विवेचन गाथा सूत्रों से प्रारंभ होता है। अवैध भाग यानी जब वेद का उदय मिट जाता है तो उसको कहते हैं अवैध भाग। 9वें गुणस्थान के भेद करते, पहले भाग में वेद का उदय है, दूसरे भाग से वो अवैध ही हो जाता है, अपगत वेद कहलाते हैं उसको। हाँ, 9वें गुणस्थान में फिर क्रम से एक एक का उदय मिटता है, क्रोध का उदय वेदक काल कहेंगे, मान का वेदक काल, इस तरह से। इस अधिकार में मूल गाथाएं 28 है और उनकी भाष्य गाथाएं 86 है। इस प्रकार इसमें कुल गाथा 114 है, जिसका बहुभाग मोहनीय कर्म की क्षपणा से संबंध रखता है। अंत की कुछ गाथाओं में कषाय का क्षय हो जाने के पश्चात जो कुछ कार्य होता है उसका विवेचन किया है। अंत की गाथा में लिखा है कि जब तक यह जीव कषाय का क्षय हो जाने पर भी छद्मस्थ पर्याय से नहीं निकलता है, तब तक ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का नियम से वेदन करता है। वेदन करता है वहां उदय है, दर्शन मोह की क्षपणा, सॉरी दर्शने चारित्र मोहनी की क्षपणा का कार्य तो 10वें के अंत तक पूरा हो गया। अब 12वें में उसका उदय है ना, ये ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और अंतराय का। उसके पश्चात दूसरे शुक्ल ध्यान से, दूसरा शुक्ल ध्यान नाम मालूम है? हाँ, लक्ष्मी बहन, हाँ, एकत्व वितर्क अविचार, हाँ, वो कब होता है? हाँ, बारहवीं में अभी बता रहे हैं ना, पश्चात, क्योंकि मोहनी का नाश होने के पश्चात, बारहवीं के भी थोड़ा का काल बीत जाने पर ये होता है, वो तो उसके डिटेल्स आएंगे। दूसरे शुक्ल ध्यान से समस्त घाती कर्मों को समूल नष्ट करके सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर विहार करता है। कषाय प्रावृत्त यहां समाप्त हो जाता है, किंतु सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाने के बाद भी जीव के चार अघातिया कर्म शेष रह जाते हैं, अतः उनके क्षय का विधान चूर्णी सूत्रकार ने पश्चिम स्कंध नामक अनुयोग द्वार के द्वारा किया है। हमने पहले देखा था पश्चिम स्कंध की बात धवला के 16वें भाग में आई थी, पश्चिम स्कंध में वो कैसे वो सिद्ध हो जाता है उसकी बात आई थी। और वह द्वार चारित्रमुखी क्षपणा नामक अधिकार के समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। इसमें चार अघाती कर्मों का क्षय बतलाकर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होने का कथन किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में यह कषाय प्रावृत्त के अधिकारों का परिचय है। अभी हम आते हैं अपने पृष्ठ संख्या 149 पर। छठी गाथा सूत्र का हमने अर्थ देखा था, अब नीचे 127 नाम का जो जय धवला का वो टीका है उसको पढ़ेंगे। अब इस संबंध गाथा का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। संयमासंयम लब्धि नाम का 12वां अर्थाधिकार है और चारित्र लब्धि नाम का 13वां अर्थाधिकार है। इन दोनों ही अर्थाधिकारों में एक गाथा निबद्ध है, यानी एक गाथा में दोनों को ही बताया है। वह कौन सी है? लब्धिय संयमा संयमस्य, यह एक ही है। इन 13 अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाली गाथाओं का जोड़ 56 होता है। पहले हमने 155 देखी थी, अब इसकी दोनों की मिलकर एक गाथा, तो 156 गाथा यहां तक हो गई। शंका, यदि अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाले गाथाओं के भेद से अर्थाधिकारों में भेद होता है, तो संयमासंयम लब्धि और चारित्र लब्धि इन दोनों को मिलाकर एक ही अर्थाधिकार होना चाहिए, क्योंकि एक गाथा में वर्णन है तो उसको एक अर्थाधिकार कहो, क्योंकि ये दोनों एक गाथा से प्रतिबद्ध है, अर्थात इन दोनों में एक ही गाथा पाई जाती है, ऐसी शंका है। समाधान, इन दोनों अर्थाधिकारों में एक गाथा प्रतिबद्ध है। इस प्रकार यदि गुणधर भट्टारक नहीं कहते तो पूर्वोक्त कहना सत्य होता, उन्होंने स्वयं बताया है दोनों में एक गाथा है करके, परंतु गुणधर भट्टारक ने पूर्वोक्त दो अधिकारों में एक गाथा प्रतिबद्ध है ऐसा कहा है। इससे जाना जाता है कि पूर्वोक्त अधिकारों से संबंध रखने वाली गाथाओं में भेद के नहीं होने पर भी, अर्थात दोनों अधिकारों में एक गाथा के रहते हुए भी दोनों ही पृथक पृथक अधिकार है। गाथा एक होने पर भी उसमें दो अर्थाधिकार है। फिर शंका, यदि अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाले गाथाओं के भेद से अर्थाधिकारों में भेद होता है, तो चारित्र मुख की क्षपणा में बहुत अर्थाधिकार होने चाहिए। अब उसको छोड़ा और अभी आगे क्योंकि वहां पर संक्रमण लिखा है, संक्रमण चाहिए ना, संक्रमण अच्छा संक्रमण लिखा है, ठीक है। संक्रमण, उद्वर्तना, कृष्टिकरण और क्षपणा आदि से संबंध रखने वाले गाथाओं का भेद पाया जाता है। संक्रमण तो समझते हैं, अन्य प्रकृति रूप होना, उसको संक्रमण कहते हैं। अब यहाँ तो मुख्यतः मोहनीय की है और वो भी अभी चारित्र मोह की क्षपणा की बात चलेगी, तो उसमें जो क्रोध है, मान रूप, मान है, माया रूप आदि होते होते उसका क्षय होता है। या पहले भी जो हम देखते हैं 8 कषाय है, वो संज्वलन रूप होकर नष्ट हो जाते हैं। फिर 9 कषाय है, वो भी वेद रूप, क्रोध रूप आदि होकर नष्ट हो जाते हैं, तो उसको संक्रमण कहेंगे। उद्वर्तन ने अपवर्तन, उद्वर्तन में क्या लेना, ऊपर चले जाना, कृष्टिकरण का अर्थ तो समझ में आता है ना, कृष्टिकरण ने पहले उसका अनुभाग अत्यंत हीन हो जाना, अनंतवा भाग अनंतवा भाग, उसको कृष्टिकरण कहते हैं, और क्षपना ने पूर्ण नष्ट हो जाना। अब समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि चारित्र मोह की क्षपना में 28 समासेन अर्थात जोड़ रूप से 28 गाथाएं हैं, इस प्रकार नहीं कहा होता तो बहुत अर्थाधिकार होते ही, परंतु वहां पर 28 गाथाओं के द्वारा जो चारित्र मोहिनी की क्षपणा कही गई है वह एक ही अर्थाधिकार है ऐसा कहा गया है। इससे जाना जाता है वहां चारित्र मोह की क्षपणा रूप अवस्था से संबंध रखने वाली गाथाओं का भेद अर्थाधिकारों के भेद को सिद्ध नहीं करता। ये समझ में है, वहां इतनी गाथाएं हैं तो बहुत अर्थाधिकार होने चाहिए क्योंकि उसमें कितने ही कर्णों का वर्णन है, तो कहते स्वयं कषाय प्रावृतकार ने ही लिखा है कि इसमें इतनी, इस अर्थाधिकार में 28 गाथाएं हैं, इसलिए उसमें और अर्थाधिकार नहीं होते, एक ही अर्थाधिकार वो कंटिन्यूअस है। उद्वर्तना का मैंने कुछ नहीं बताया, ये उत्कर्षण अपवर्तन और उद्वर्तन, उद्वर्तन क्यों अपव, क्योंकि यहाँ तो अपवर्तन ही चलता है। अब अपना जो विषय जब आएगा तब उसका ज्यादा खुलासा होगा। अपवर्तन ही होना चाहिए, ऊपर तो ओवठ्य, नीचे से संकामण उवठावण किट्टी खवणा दिशु, ओवठाण, ओवठाण का अर्थ अपवर्तन ही होता है। देखो आगे गाथा साथ में लिखा है, सेकंड लाइन ओवठाणाए, और नीचे उसका अर्थ क्या है, चारित्र मोह की अपवर्तना में, ये उद्वर्तना लिखा है परंतु ये अपवर्तना शायद चाहिए। विशेषार्थ पढ़ते हम, एक अर्थाधिकार में अनेक उप अर्थाधिकार और उनसे संबंध रखने वाली अनेक गाथाओं के होने मात्र से उसमें भेद नहीं हो सकता, भले उसमें ये सब डिविजन्स करेंगे फिर भी मूल अर्थाधिकार एक ही रहता है, तथा अनेक अर्थाधिकारों में एक ही गाथा पाने जाने मात्र से वे अर्थाधिकार एक नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने देखा था संयमासयम और संयम लब्धि को एक ही गाथा में उन्होंने निबद्ध किया है, प्रतिबद्ध किया है। अर्थाधिकारों का भेदाभेद आवश्यकतानुसार आचार्य द्वारा की गई प्रतिज्ञा के ऊपर निर्भर है। आचार्य स्वयं कह रहे हैं मैंने इतने अर्थाधिकार बनाए हैं और इसमें दो अर्थाधिकार एक गाथा में और यहाँ पर एक ही अर्थाधिकार 28 गाथाओं के द्वारा कहा है, तो उनकी प्रतिज्ञा के ऊपर ये निर्भर है। गाथाओं के भेदाभेद से उसका कोई संबंध नहीं है। अब आगे 129 अठे वो सामण धम्मी ऐसा कहने पर चारित्र मोह की उपशामना नाम का 14वां अर्थाधिकार लेना चाहिए। उस अर्थाधिकार से संबंध रखने वाली 8 गाथाएं हैं, वे कौन सी है, वो सामणा कदिविहा इस गाथा से लेकर वो सामणा खयेण दु अंसे बंददी इस गाथा तक 8 गाथाएं हैं। यहां तक कुल गाथाओं का जोड़ 64 होता है। अब चारित्र मोह की क्षपणा वाला ऊपर पढ़ेंगे 7 नंबर का हम गाथा सूत्र। चत्तार्य पठवये गाहा संकामये विचत्तारी ओवट्टनाय तिन्निदु एकारस होंति कीट्टिये। चारित्र मोह की क्षपणा का प्रारंभ करने वाले जीव से संबंध रखने वाली 4 गाथाएं हैं। वो क्षपणा का प्रारंभ कौन से जीव करते हैं उसकी बात। चारित्र मोह की संक्रमणा करने वाले जीव से संबंध रखने वाले भी 4 गाथाएं हैं, उसका संक्रमण बताएंगे। चारित्र मोह की अपवर्तना में आए ना, यहाँ अपवर्तन शब्द, 3 गाथाएं आई है, तथा चारित्र मोह की क्षपणा में जो 12 कृष्टियां होती है उनमें 11 गाथाएं आई हैं। गाथा ए चाहिए, गाथा यही है। अपवर्तना में क्या होता है, वो घटते जाते हैं ना, अपवर्तन है ना, अनुभाग का घटना वो सब, और अपकर्षण भी कहेंगे, परंतु उसका खास अपवर्तन शब्द आया है। और कृष्टियां होती है, कृष्टियां तो हमने देखी थी पहले, तो हम वर्गणा कहते हैं, परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं, और एक एक वर्गणा प्रति अनुभाग, एक एक अविभाग प्रति से नीचे से ऊपर तक बढ़ता हुआ होता है। अब ये जो कृष्टि होती है, वहाँ वर्गणा थी, अभी इसको कृष्टि कहते हैं। तो उसमें एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में अनुभाग नीचे से ऊपर अगर लेंगे, अनंत गुणा होगा। अभी जो वर्गणाएं थी उसमें से अनेक परमाणु, बहुत सारे परमाणु, उनका अनुभाग घट कर उसमें से कृष्टियाँ कहलाती है अभी। और अनेक कृष्टियों के समूह जो होते हैं उसको संग्रह कृष्टि कहते हैं। ऐसे ये 12 संग्रह कृष्टियाँ यहाँ होगी, क्रोध मान माया और लोभ में प्रत्येक में 3-3 संग्रह कृष्टियाँ होती हैं। उसमें क्या होती है वो सब विषय तो जब ही आएगा तभी उसकी विस्तार से चर्चा होगी। अब इस गाथा का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। चारित्रमौखिक सपना का जो प्रस्थापक, प्रस्थापक यानी शुरू करने वाला, जो प्रारंभ अर्थात प्रारंभक या आरंभ करने वाला है, यानी बिगिनर जो अभी शुरू कर रहा है, उसके वर्णन से संबंध रखने वाली 4 गाथाएं हैं। वे कौन सी है? शंकामय पट्ठवगस् परिणामो केरिसो हवे, इस गाथा से लेकर किंठिदियाणी कम्माणी, इस गाथा तक 4 गाथाएं हैं। तथा शंकामय भी चत्तारी, ऐसा कथन करने का तात्पर्य यह है कि चारित्रमुखी क्षपणा करने वाला जीव 9वें गुण स्थान में अंतरकरण करने पर संक्रामक कहलाता है। जैसे हम पंचलब्धि में देखा हमने, दर्शन मोह की उपशमना करता है ना, तो उसमें अंतर करता है, तो उसको अंतरकरण किया जाता है। ऐसे ही चारित्र मोह में भी अंतर किया जाता है, उपशामक के भी और क्षपक के भी, तो तब उसको संक्रामक कहेंगे। इस संक्रामक के वर्णन से संबंध रखने वाली 4 गाथाएं हैं, वे कौन सी है? शंकामग पट्ठव, इस गाथा से लेकर बंधो व संकोमो व उदयो व, इस गाथा तक 4 गाथाएं हैं। क्षपक श्रेणी संबंधी चारित्रमोह की अपवर्तना के वर्णन में 3 गाथाएं आई है, वे कौन सी है? किम अंतरम करें तो, इस गाथा से लेकर ठिदी अनुभागे असंग, इस गाथा तक अनुभागे अंश, इस गाथा तक 3 गाथाएं हैं। ये अंतर के बाद चारित्रमौखिक क्षपणा में 12 संग्रह कृष्टियां होती हैं, अभी बताए थे ना। उन 12 संग्रह कृष्टियों के वर्णन से संबंध रखने वाली 11 गाथाएं हैं, वे कौन सी है? केवड़िया किट्टियो, इस गाथा से लेकर किट्टी कयम्मी कम्मे के विचारोदु मोहनियस, इस गाथा तक 11 गाथाएं हैं। ये यहाँ तो क्रम से पूरा जो ग्रंथ है उसमें कौन कौन सी गाथा में कौन कौन सा विषय आने वाला है ये सब पूरा बता दिया। अभी 8 नंबर की गाथा। चत्तारिय खवणाए एका पुनहो दिखीण मोहस, एका संगहणीये अठवीसम समासेन। 12 संग्रह कृष्टियों की क्षपणा के कथन में 4 गाथाएं आई है, क्षीण मोह के कथन में 1 गाथा आई है, तथा संग्रहणी के कथन में 1 गाथा आई है। इस प्रकार चारित्र मोह की क्षपणा से संबंध रखने वाली कुल गाथाओं का जोड़ 28 होता है, पहले ही उन्होंने बताया था ना, 28 होता है। चत्तारिय खवणाए, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि 12 संग्रह कृष्टियों की क्षपणा के कथन में 4 गाथाएं आई है, वे कौन सी है? किम वेदंतो किट्टिम खवेदी, इस गाथा से लेकर किट्टी दो किट्टिम पुनः, इस गाथा तक 4 गाथाएं हैं। एक का पुनः हो दिखीण मोहस, इस प्रकार कथन करने का तात्पर्य है कि क्षीण कषाय के वर्णन से संबंध रखने वाली एक गाथा है। ये क्षीण कषाय किसको कहना है? हाँ, बारवा गुणस्था। यहाँ कषाय प्रावृत का तो प्रयोजन तो कषाय संबंधी बात है, वो यहाँ तो पूरी हो जाती है जब मुनि की क्षपणा हो जाती है, फिर भी बारवा और आगे का भी वर्णन करेंगे। तो क्षीण कषाय के वर्णन से संबंध रखने वाली एक गाथा है, वह कौन सी है? तो क्षीणेशु कषायेशु यह शेषाणम, यह एक ही गाथा है। एक्का संगणीय इस कथन से यह सूचित किया है कि संग्रहणी के कथन में संक्रामण ओवट्ठण यह एक ही गाथा है। अट्ठावीसम समासेण, वो बी नहीं चाहिए, वी चाहिए। इस पद के द्वारा यह सूचित किया है कि चारित्र मुख की क्षपणा के कथन से संबंध रखने वाली गाथाओं का जोड़ 28 से ही है। शंका, चारित्र, ये च नहीं आया है वहां। चारित्र मोह की क्षपणा के कथन से संबंध रखने वाली 28 गाथाओं के परिमाण का निर्देश किस लिए किया है? ये क्यों बताया यहां इतनी गाथाएं कहकर? उसका समाधान, जिस अर्थाधिकार में जितनी गाथाएं पाई जाती है उनका मैं कथन करता हूं, इस प्रकार के प्रतिज्ञा वचन को सुनकर जिस जिस अर्थाधिकार विशेष से संबंध रखने वाली गाथाएं दिखाई पड़ती है, उन अर्थाधिकार विशेषों को पृथक पृथक अधिकारपना प्राप्त होता है। यानी कौन से विषय की कौन सी गाथा है, इस तरह से वो अर्थाधिकार पृथक है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है शिष्यों को। इस प्रकार शिष्य में उत्पन्न हुई विपरीत बुद्धि के निराकरण के लिए, क्योंकि आचार्य स्वयं बता रहे हैं ना ये इसका विषय है, तो कोई अन्य ही नहीं समझ लिए, उसको कहते हैं विपरीत बुद्धि के निराकरण के लिए। चारित्र त्र करो, उसका बराबर नहीं दिख रहा है। चारित्र मुख की क्षपणा में आई हुई कुल गाथाओं का जोड़ 28 है, ऐसा कहा है। अर्थात चारित्र मुख की क्षपणा नामक अधिकार में अनेक अवांतर अर्थाधिकार है। अवांतर यानी उसके जो हम सब डिविजन्स कहते ना, इसको अवांतर अधिकार। यदि उस अधिकार से संबंध रखने वाली कुल गाथाओं का जोड़ न बतलाया जाता तो शिष्य को यह मति विभ्रम होने की संभावना है। मति विभ्रम यानी उसका यह सब कल्पना हो सकती है कि प्रत्येक अवांतर अर्थाधिकार एक एक स्वतंत्र अधिकार है, ये पूरा ही चारित्र मुख की क्षपणा वाला अधिकार नहीं मानकर संक्रमण वाला है, फिर ये तो क्षपणा वाला है, ये हमने देखे ना अपवर्तन वाला है, ऐसे वो समझ लेता, कृष्टि वाला और वो संग्रह कृष्टि वाला वगैरह। तो अतः इस मति विभ्रम को दूर करने के लिए चारित्र मुख क्षपणा नामक अर्थाधिकार से संबंध रखने वाली गाथाओं के परिमाण का निर्देश किया है। निर्देश करना यानी कथन करना। 28 समासेन इस पद से इन 28 गाथाओं के द्वारा एक ही अर्थाधिकार कहा गया है, इस प्रकार अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। यदि यह अभिप्राय न लिया जाए तो कषाय प्रावृत में 15 अर्थाधिकारों के सिवाय और भी बहुत से अर्थाधिकारों की प्राप्ति का प्रसंग प्राप्त होता है। फिर शंका, इस चारित्र मुख की क्षपणा नामक अर्थाधिकार में इन 28 गाथाओं के अतिरिक्त और भी बहुत सी गाथाएं आई हैं, उन सबको छोड़कर चारित्र मुख के क्षपणा नामक अर्थाधिकार में 28 ही गाथाएं हैं, ऐसा किस लिए कहा है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि इन 28 गाथाओं के द्वारा प्ररूपण किए गए अर्थ को छोड़कर उन शेष गाथाओं का अन्य कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं पाया जाता है। अर्थात वे शेष गाथाएं उसी अर्थ का प्ररूपण करती है जो कि 28 गाथाओं के द्वारा कहा गया है। इसलिए चारित्र मुह के पहले गाथा लिखा था ना उन्होंने, भाष्य गाथाएं हैं कहके, इसलिए चारित्र मुह की क्षपणा नामक अधिकार में 28 ही गाथाएं हैं, ऐसा कहा है। चारित्रमौखिक सपना के प्रारंभ करने वाले के कथन में चार, यानी जो जीव उसका प्रारंभ करता है उस जीव संबंधी कथन में चार, संक्रामक के कथन में चार, संक्रामण करने वाले के चार, अपवर्तना के कथन में तीन और कृष्टियों के कथन में ग्यारह, कृष्टियों की क्षपणा के कथन में चार, क्षीण मोह के कथन में एक और संग्रहणी के कथन में एक। इस प्रकार इन गाथाओं का जोड़ जिस कारण से 28 ही होता है, इसलिए पहले जो कहा गया है वह ठीक ही कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। चारित्र मुनि के क्षपणा नामक 15वें अर्थाधिकार से संबंध रखने वाली इन 28 गाथाओं का 14 अधिकारों से संबंध रखने वाली पहले की 64 गाथाओं में मिला देने पर कुल गाथाओं का जोड़ 92 होता है, 92 हो जाता है। अब 15वें अर्थाधिकार में कही गई 28 गाथाओं में से कितनी सूत्र गाथाएं हैं और कितनी सूत्र गाथाएं नहीं है, इस प्रकार पूछने पर असूत्र गाथाओं के प्रमाण का प्ररूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब ये सूत्र के आगे शंकाकार पूछ रहे हैं, सूत्र गाथा किसे कहते हैं, जिससे अनेक अर्थ सूचित हो वह सूत्र गाथा है, और इससे विपरीत अर्थात जिसके द्वारा अनेक अर्थ सूचित न हो वह असूत्र गाथा है। आगे उनका प्रमाण बतलाते हैं। हाँ कुछ पूछा? हाँ यही तो बता रहे ना कि जिसमें अनेक अर्थ सूचित हो वो उसको सूत्र कहेंगे, क्योंकि एक सूत्र के द्वारा बहुत सारा महान उसमें से अर्थ निकलता है, और जहाँ अनेक अर्थ नहीं हो तो वो असूत्र गाथा कहलाएगी। उसका प्रमाण अभी बताएंगे यहाँ पर कितनी है क्या है, ऊपर पढ़ेंगे पहले। किट्टी कय विचारे संगहणी क्षीण मोह पट्टवे सत्ते नागाहा हो अन्नाओ सवास गाथाओ। कृष्टि संबंधी 11 गाथाओं में से विचार विषयक एक गाथा, वो भी हुआ है विचार विषयक एक गाथा, संग्रहणी का प्रतिपादन करने वाली एक गाथा, क्षीण मोह का प्रतिपादन करने वाली एक गाथा और चारित्र मोह की क्षपणा के प्रस्थापक से संबंध रखने वाली चार गाथाएं, इस प्रकार ये 7 गाथाएं सूत्र गाथाएं नहीं है, तथा इन 7 गाथाओं से अतिरिक्त शेष 21 गाथाएं सभाष्य गाथाएं अर्थात सूत्र गाथाएं है, वो है करो हे हुआ सभाष्य है ना, भाष्य सहित, और ऊपर जो बताए थे उसमें से थोड़ा ही विषय आता है उसमें। अभी इसी का अर्थ और खोलकर बताएंगे। अब इस गाथा का अर्थ कहते हैं वो इस प्रकार है, किट्टी कहे विचार ऐसा कथन करने पर कृष्टि संबंधी 11 गाथाओं में से 11वीं विचार संबंधी एक मूल गाथा लेना चाहिए, संग्रहणी ऐसा कथन करने पर संग्रहणी विषयक एक गाथा लेना चाहिए, क्षीण मोह ऐसा कथन करने पर क्षीण मोह संबंधी एक गाथा लेना चाहिए, तथा पट्टवय ऐसा कहने पर चारित्र मोह की क्षपणा के प्रस्थापक से संबंध रखने वाली चार गाथाएं लेना चाहिए, सत्येदा गाहाओ ऐसा कथन करने पर ये पूर्वोक्त 7 सूत्र गाथाएं नहीं है ऐसा निश्चित होता है, क्योंकि ये गाथाएं जिस अर्थ को सूचित करती हैं उससे संबंध रखने वाली भाष्य गाथाओं का अभाव है। इन 7 गाथाओं के अतिरिक्त अन्य 21 गाथाएं सभाष्य गाथाएं हैं, उसका भाष्य किया हुआ है, उसका अर्थ खोलकर बताए हैं। चारित्र मोह की क्षपणा नामक अर्थाधिकार में कही गई 28 गाथाओं में से इन 7 गाथाओं के घटा देने पर शेष 21 गाथाएं अन्य इस पद से निर्दिष्ट की गई हैं। ऊपर लिखा ना अन्नाओ सभास गाहाओ, अन्य जो है वो सभाष्य गाथाएं है। अभी उसको सभाष्य गाथा को बताएंगे। सभाष्य गाथा इस पद में बहुव्रीही समास है, इसलिए जो गाथाएं भाष्य गाथाओं के साथ पाई जाती है, अर्थात जिन गाथाओं का व्याख्यान करने वाली भाष्य गाथाएं भी है, वे सभाष्य गाथा कहलाती है, यह सिद्ध होता है। नहीं समझे? स शब्द कब लगाते हैं? सजीव किसको कहेंगे? तो हम कैसे हैं? सजीव है कि निर्जीव है? हाँ बरोबर है, हम सजीव नहीं है, हम जीव है, हम सशरीर कह सकते हम, परंतु हमारे साथ जीव नहीं है, हम स्वयं जीव है, परंतु अन्य क्या, ये सजीव प्राणी कितने हैं, सजीव प्राणी कितने हैं, वो क्या शरीरों की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, उनको प्राणी जिसको कहते हैं, प्राण जिसमें है, शरीर आदि की है, तो उसकी अपेक्षा हम जीव गिनते, उनको सजीव कहते हैं, बायोलॉजी में लिविंग बीइंग कहेंगे ना, यानी वो तो ऐसा कहेंगे सजीव है, और ये निर्जीव है ने डेड बॉडी है, उसको निर्जीव कहेंगे, इसमें से जीव निकल गया है और इसमें जीव है, तो उसको सजीव कहेंगे। तो ये स भाष्य गाथा, भाष्य गाथाओं सहित जो गाथाएं हैं उनको सभाष्य गाथाएं कहते हैं, यानी कुछ गाथा ऐसी है कि उनका व्याख्यान करने वाली और एक्स्ट्रा गाथाएं हैं, वहां पर उनको भाष्य गाथाएं कहेंगे और उस मूल गाथा को सभाष्य गाथा कहेंगे। शंका, जहां पर भाष्य गाथा ऐसा कहा गया है वहां पर सह शब्द का अर्थ कैसे उपलब्ध होता है, उसका समाधान, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि सह शब्द के बिना भी वहां सह शब्द का अर्थ निविष्ट रूप से पाया जाता है। निविष्ट है ने उसमें गर्भित है, फिर शंका, सह शब्द का अर्थ रहते हुए वहां पर स शब्द क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? तो ये स शब्द वहां क्यों नहीं लगाते हैं, ऐसा कहते हैं, अकेला भाष्य गाथा कहा तो उसको सभाष्य गाथा क्यों नहीं कहा? ऊपर लिखा ना, वे भाष्य गाथा है ऐसा कहते हैं, तो भाष्य गाथा के बदले आप स लगा के क्यों बताते हो? पहले ही उन्होंने क्यों नहीं लगाया? अकेला भाष्य गाथा क्यों कहलाते हैं? तो उसका कारण बताएं। नहीं, क्योंकि ये 72 नंबर का ऊपर जो उन्होंने उद्धृत किया है, हिरई एयाण काणवी आई मच्छंत वन्न सरलो केसिंचि आगमोच्य इठाणम वंजन सराणम। नहीं, क्योंकि किन्हीं पदों के आदि मध्य और अंत में स्थित वर्णों और स्वरों का लोप किया जाता है, ये व्याकरण संबंधी नियम बताते हैं, किसी के शुरू में, किसी के मध्य में और किसी के अंत में कोई जो वर्ण या स्वर होता है उसका लोप हो जाता है, तथा किन्हीं इष्ट व्यंजन और स्वरों का आगम भी किया जाता है, आगम यानी वह एक्स्ट्रा डाले भी जाते हैं। इस लक्षण के अनुसार जहां स शब्द सुनाई नहीं पड़ता है वहां उसका लोप समझना चाहिए, यानी भाष्य गाथा कहो या सभाष्य कहो एक ही बात है। ये तो अन्य भाषाओं में भी होता है ना, ये न्यूमोनिया का स्पेलिंग मालूम है क्या है? पी से शुरू होता है, उसका उच्चारण नहीं करता है, और नॉलेज के से शुरू होता है ना, कर्नल। हाँ, तो ऐसे वहां भी वो साइलेंट कहते हो, तो यहाँ वही बात बता रहे, उसका लोग समझना चाहिए। ये 21 गाथाएं अर्थ का सूचना मात्र करने वाली होने से सूत्र गाथाएं हैं, विशेषार्थ। यद्यपि पहले यह बताए हैं कि गुणधर आचार्य ने जितनी गाथाएं रची हैं, उनमें सूत्र का लक्षण पाया जाता है, इसलिए वे सब सूत्र गाथाएं हैं, तथा प्रतिज्ञा श्लोक में स्वयं गुणधर आचार्य ने भी सभी गाथाओं को सूत्र गाथा कहा है, परंतु यहाँ चारित्र मोहिनी की क्षपना के प्रकरण में आई हुई गाथाओं में जो सूत्र गाथा और असूत्र गाथा इस प्रकार का भेद किया है, उसका कारण यह है कि इस प्रकरण में मूल गाथाएं 28 है, उनमें से 21 गाथाओं के अर्थ का व्याख्यान करने वाली 86 भाष्य गाथाएं पाई जाती हैं। मूल तो 28 है और उसमें 86 तो भाष्य गाथाएं, और शेष 7 मूल गाथाएं स्वयं अपने प्रतिपाद्य अर्थ को प्रकट करती हैं। उनके अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए अन्य व्याख्यान गाथाओं की आवश्यकता नहीं है। भाष्य गाथा कहो या व्याख्यान गाथा कहो, एक ही बात है। अतः जिन 21 गाथाओं पर व्याख्यान गाथाएं पाई जाती है उन्हें अर्थ का सूचन करने वाली होने से सूत्र गाथा, उनका व्याख्यान करने वाली गाथाओं को भाष्य गाथा और शेष 7 गाथाओं को असूत्र गाथा कहा है। यह व्यवस्था केवल इस प्रकरण से ही संबंध रखती है। ये चारित्र मौखिक क्षपणा के बारे में ही ये बात बताई है। पूर्वोक्त व्यवस्था के अनुसार तो गुणधर आचार्य के द्वारा बनाई गई सभी गाथाएं सूत्र गाथाएं है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वैसा ही उन्होंने पहले ही लिखा है। तो पहले उन्होंने ग्रंथ का नाम बता दिया, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था वो भी बता दिया, अब आने वाला पूरा विषय अर्थाधिकार बता दिए 15। अब इन गाथाओं की संख्या के साथ सूत्र संज्ञा के प्ररूपण करने के लिए और व्याख्यान गाथाओं की संज्ञा के प्ररूपण करने के लिए आगे का गाथा सूत्र आया है 10 नंबर का। संकामण ओ वठण किट्टी खवणाए एक कवि संतु एदाओ सुत गाहाओ सुन अन्ना भास गाहाओ। चारित्र मोहिनी की क्षपणा नामक अर्थाधिकार के अंतर्भूत संक्रामण, अपवर्तन, पुष्टि और क्षपणा, इन चार अर्थाधिकारों में जो 21 गाथाएं कही है वे सूत्र गाथाएं हैं। क्या कहते हैं? अभी अभी हमने देखा ना, चारित्र मौखिक क्षपणा में चार अधिकार है, कौन से? संक्रामण, अपवर्तन, पुष्टि और क्षपणा। तो इन चार में 21 गाथाएं आई है, वे सूत्र गाथाएं हैं, तथा इन 21 गाथाओं के अर्थ के प्ररूपण से संबंध रखने वाली गाथाएं भाष्य गाथाएं हैं, उन्हें सुनो। ऊपर आए थे शब्द सुन, उन्हें सुनो। वे 21 सभाष्य गाथाएं वे 21 सभाष्य गाथाएं कहां है ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि संक्रामण, अपकर्षण, देखो अपवर्तन को ही यहाँ अपकर्षण का है ना, कृष्टि और क्षपणा में वे 21 गाथाएं हैं। अपकर्षण भी होता, अपवर्तन हमने कहा था, अपकर्षण भी उसका नाम, स्थिति अनुभाग घटने को अपकर्षण कहते हैं। आगे इसी विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। संक्रमणा में 4, अपवर्तना में 3, कृष्टि में 10 और क्षपणा में 4 सभाष्य गाथाएं हैं। इस प्रकार इन सबको एकत्र करने पर 21 सभाष्य गाथाएं होती है। ये 21 गाथाएं सूत्र गाथाएं हैं क्योंकि ये अपने अर्थ का सूचन मात्र करती हैं। यहाँ सूत्र के विषय में उपयोगी श्लोक देते हैं। अर्थस्य सूचनात् सम्यक् सूतेर्वार्थस्य सूरिणा सूत्रमुक्तमनल्पार्थम् सूत्रकारेण तत्त्वतः। ये सूचनात्मक एक शब्द चाहिए ऊपर, अर्थस्य सूचनात् सम्यक् और सूत्रकारेण चाहिए, सत्रकारेण हुआ है उसका अर्थ नीचे लिखा, देखो नंबर जो भले प्रकार अर्थ का सूचन करे। अर्थस्य सम्यक सूचनात् अथवा अर्थ को जन्म दे, सूते हे वा अर्थस्य, उस बहुअर्थगर्भित रचना को सूत्रकार आचार्य ने निश्चय से सूत्र कहा है। सूत्रकारेण लिखा ना, ऊपर स का सु करना है, सूत्रकारेण। शिष्य को सावधान करने के लिए गाथा सूत्र में जो सुनो यह पद कहा है, वह ना समझ शिष्य को व्याख्यान करना निरर्थक है, यह बतलाने के लिए। वो संस्कृत में आता है ना, वो तो कवित्व निवेदनम के, ये यहाँ तो लिखा है अबुद्धस्य बोधनार्थम, परंतु मराठी में भी ऐसा, मराठी संस्कृत में, हाँ, यह बतलाने की शिरसी अरसिकेश, जो रस, वहां तो काव्य के बारे में लिखा है, जो रसिक नहीं है ऐसे जीवों को काव्य समझाना ये मेरे नसीब में मत लिखो, ऐसा कहते हैं। अरसिकेश काव्य निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक, यानी उनकी मान्यता है ना, कोई आके यहाँ लिख देता है, विधि लिखा ना, ऐसा जो कुछ कहते हैं, यहाँ तो अलग बात है। यह बतलाने के लिए कहा है, गाथा सूत्र में आए हुए अन्ना वो भासगाहा, इस पद का यह तात्पर्य है। इन 21 गाथाओं के अतिरिक्त अन्य जो गाथाएं इन 21 गाथाओं के अर्थ का प्ररूपण करने से संबंध रखती हैं, वे भाष्य गाथाएं हैं, अर्थात व्याख्यान गाथाएं हैं। वे भाष्य गाथाएं कौन सी है ऐसा पूछने पर इस अर्थ में इतनी इतनी भाष्य गाथाएं हैं, इस प्रकार संख्या के साथ उन भाष्य गाथाओं को बतलाने के लिए आगे की दो सूत्र गाथाएं कहते हैं। ये तो पूरा आगे क्या आने वाला है उसमें कितना विवेचन, अभी तो 11वीं आ गई, 11वीं 12वीं गाथा। पंचय तिन्य दो चक्क चौक तिन्य तिन्य काय चत्तारिय तिन्य दुए पंचय एकम तहय छक्कम तिन्य चौरो तह दुग चत्तारिय होंति तह चौक्कम च दो पंचे वय एका अन्ना एकाय दस दोय। 21 सभाष गाथाओं की 5, 3, 2, 6, 4, 3, 3, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 6, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 5, 1, 1, 10 और 2, इस प्रकार ये 86 भाष्य गाथाएं जाननी चाहिए। अब इन दोनों गाथाओं का अर्थ कहते हैं। इन्होंने तो केवल संख्या लिख दी यहाँ पर, वह इस प्रकार है। 9वें गुणस्थान में अंतरकरण के करने पर जीव संक्रामक कहा जाता है। अभी हम 158 पृष्ठ पर आ गए हैं, 140वां भाष्य बताते हैं। उस संक्रामक के वर्णन में चार मूल गाथाएं हैं, उनमें से संक्रामण पट्ठवगस्स किंठी दियाई पूर्व बद्धाणी यह पहली मूल गाथा है। इसकी 5 भाष्य गाथाएं हैं। ये बीच बीच में आई ना, कोई एक विषय बताए फिर उसकी भाषा गाता है, फिर दूसरी गाता है, फिर उसकी भाषा गाता है। वे कौन सी है? संकामय पट्ठवगत से इस गाथा से लेकर संकंतम्य नियमा इस गाथा तक 5 भाषा गाथाएं हैं। संकामण पट्ठव संक्रामक संबंधी इस दूसरी गाथा के 3 अर्थ हैं। उन 3 अर्थों में से संकामण पट्ठव के बंददी इस पहले अर्थ में 3 भाषा गाथाएं हैं। वे कौन सी है? वत्स सद सहसायम ठिदि संख्या इस गाथा से लेकर सवावरणीयाणम जैसिम इस गाथा तक 3 भाषा गाथाएं हैं। केच वेदयदे अंसे इस दूसरे अर्थ में 2 भाषा गाथाएं आई हैं। वे कौन सी है? निद्दाय नीच गोदम इस गाथा से लेकर वेदेच वेयणीय इस गाथा तक 2 भाषा गाथाएं हैं। संकामेदीय के या के इस तीसरे अर्थ में छह भाष्य गाथाएं आई है, वे कौन सी है? सवस्व मोहनीयस आणु पूर्वीय संक्रमण होई इस गाथा से लेकर संकामय पट्टवो इस गाथा तक छह भाष्य गाथाएं हैं। ये जैसे इंडेक्स हम अनुक्रमणिका होती है वैसी है, यहाँ पर कहाँ कौन सी गाथाएं कितनी संख्या में आई है, क्योंकि इसका जो जिन्होंने पहले अभ्यास किया उनको तो थोड़ा कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है वो पता चलेगा, नहीं तो अभी हमने पढ़ा नहीं है तब तक क्या होगा, बस हम उसके नाम पढ़ रहे हैं। ये आणुपूर्वी संक्रमण वगैरह जो होता है नवे गुणस्थान में, विशिष्ट ऑर्डर में ही संक्रमण होता है। क्रोध है वो मान रूपी होगा, और मान है वो माया रूपी होगा, माया है वो लोभ रूपी होगा। बाकी अन्य संसार अवस्था में तो कौन सा भी कषाय किसी में भी संक्रमण हो सकता है, यहाँ अनुपूर्वी संक्रमण आदि बातें कहाँ क्या होता है उसका संदर्भ इसमें आ जाता है, तो विषय के अनुसार ही हम समझेंगे उसको। अभी तो इंडेक्स पढ़ रहे हैं हम अनुक्रमणिका। बंधो व संकमो व संक्रामक संबंधी इस तीसरी मूल गाथा की चार भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? बंधेन होदी उदवो अहियो इस गाथा से लेकर गुणसेड़ी अनंत गुणे गुणा अनंत गुणे नूणा अनंत गुणेन ऊणा इस गाथा तक चार भाष्य गाथाएं हैं। बंधो व संकमो व उदवो व संक्रामक संबंधी इस चौथी मूल गाथा की तीन भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? बंधोदय ही नियमा इस गाथा से लेकर गुणदो अनंत गुणहीनम वेद यदि इस गाथा तक तीन भाष्य गाथाएं हैं। इस प्रकार यहाँ तक गाहा संकामय भी चत्तारी इस गाथांश की 23 भाष्य गाथाएं बतलाई गई। ओवठनाय तिन्निदु इस वचन के अनुसार अपवर्तना नामक अधिकार में तीन मूल गाथाएं हैं, उनमें से किम अंतरम करें तो वड्डदी इस पहली मूल गाथा की तीन भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? ओवठना जहन्ना आवलिया ऊनिया तिभागेण इस गाथा से लेकर ओवठ दीजे अंसे इस गाथा तक तीन भाष्य गाथाएं हैं। एकम चिदि विशेषम अपवर्तना संबंधी इस दूसरी मूल गाथा की एक भाष्य गाथा है, वह कौन सी है? एकम चिदि विशेषम असंख्य जेसु यह एक ही भाष्य गाथा है। ठिदि अनुभागे अंसे अपवर्तना संबंधी इस तीसरी मूल गाथा की चार भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? ओवठेदि ठिदिम पुनः इस गाथा से लेकर उवठनम उवठन किट्टी वज्जेसु इस गाथा तक चार भाष्य गाथाएं हैं। है करो बराबर। इस प्रकार अपवर्तना में आई तीन मूल गाथाओं की भाष्य गाथाओं का प्रारूपण किया। 142 वाला वो नीचे कृष्टि में 11 मूल गाथाएं हैं, उनमें से केवड़िया किट्टियो यह पहली मूल गाथा है, इसकी तीन भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? 12 96 3 किट्टियो होंती इस गाथा से लेकर गुणसेड़ी अनंत गुणा लोभादि इस गाथा तक तीन भाष्य गाथाएं हैं। कदिस जो अनुभागे सुच कृष्टि संबंधी इस दूसरी मूल गाथा की दो भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? किट्टी चिदि विशेषेशु इस गाथा से लेकर सव्वाओ किट्टियो विदिय ठिदिये इस गाथा तक दो भाष्य गाथाएं हैं। किट्टी च पदे सज्ञेन अनुभागज्ञेन काच कालेन कृष्टि संबंधी इस तीसरी मूल गाथा के तीन अर्थ होते हैं, उसमें से किट्टी च पद सज्ञेन इस पहले अर्थ में पांच भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? विदियादव पुनः पढ़मा इस गाथा से लेकर ऐसो कमोय कोहे इस गाथा तक पांच भाष्य गाथाएं हैं। अनुभागज्ञेन इस दूसरे अर्थ में एक भाष्य गाथा है, वह कौन सी है? परमाच अनंत गुणा विदियादो यह एक ही गाथा है। काच काले ने इस तीसरे अर्थ में छह भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? परम समय किट्टीनम कालो इस गाथा से वो बराबर करना गा था। इस गाथा से लेकर वेदय कालो किट्टिय इस गाथा तक छह भाष्य गाथाएं हैं। कदिसु गदिसु भवेसु य कृष्टि संबंधी इस चौथी मूल गाथा की तीन भाष्य गाथाएं हैं। वे कौन सी है? दोसु गदिसु अभज्जा इस गाथा से लेकर उक्कस्य अनुभागे ठिदि उक्कस्याणि इस गाथा तक तीन भाष्य गाथाएं हैं। पज्जत्ता पज्जत्तेन पज्जत्तेन हुआ है ये समास हो गया ना, दोनों को मिलाया तेन हुआ, वो तेन करो। पज्जत्ता पज्जत्तेन तथा कृष्टि संबंधी पांचवी मूल गाथा की चार भाष्य गाथाएं हैं। वे कौन सी है? पज्जत्ता पज्जत्ते मिच्छत्ते इस गाथा से लेकर कम्माणि अभज्जाणि दु इस गाथा तक चार भाष्य गाथाएं हैं। किम लेसाय बद्धाणि कृषि संबंधी छठी मूल गाथा की दो भाष्य गाथाएं हैं। वे कौन सी है? लेसा सादमसादेय इस गाथा से लेकर एदाणि पूर्व बद्धाणि इस गाथा तक दो भाष्य गाथाएं हैं। एक समय पबद्धा पुनः अच्छुद्धा इस कृष्टि संबंधी सातवीं मूल गाथा की चार भाष्य गाथाएं हैं। वे कौन सी है? छन्नम आवलियाणम अच्छुद्धा इस गाथा से लेकर एदे समय पबद्धा अच्छुद्धा इस गाथा तक चार भाष्य गाथाएं हैं। एक समय पबद्धाणम शेषाणीय कृष्टि संबंधी इस आठवीं मूल गाथा की चार भाष्य गाथाएं हैं। वे कौन सी है? एकम मिठिदि विशेषे इस गाथा से लेकर एदेण अंतरेण दु इस गाथा तक चार भाष्य गाथाएं हैं। किट्टिकयम्मि कम्मे कृष्टि संबंधी इस नौवी मूल गाथा की दो भाष्य गाथाएं हैं। वे कौन सी है? किट्टिकयम्मि कम्मे नामा गोदाणी इस गाथा से लेकर किट्टिकयम्मि कम्मे सादम सो इस गाथा तक दो भाष्य गाथाएं हैं। किट्टिकयम्मि कम्मे के बंदधि कृष्टि संबंधी इस दसवीं मूल गाथा की पांच भाष्य गाथाएं हैं। वे कौन सी है? दससुच वत्स संतो बंदधि इस गाथा से लेकर जस नाम उच्च गोदम वेदयदे इस गाथा तक पांच भाष्य गाथाएं हैं। किट्टिकयम्मि कम्मे के विचारोदु मोहनिज्जस कृष्टि संबंधी इस ग्यारहवीं मूल गाथा की भाष्य गाथाएं नहीं है, क्योंकि यह गाथा सुगम है। इस प्रकार इक्कारस होन्ति किट्टिये इस गाथांश का वर्णन समाप्त हुआ। अभी गाथा नहीं, गाथांश हुआ। चार विषय है ना, अभी तो कृष्टि का विषय हो गया। चत्तारिय खवणाएं इस वचन के अनुसार वचन हुआ, वचन के अनुसार बारह कृष्टियों की क्षपणा में चार मूल गाथाएं हैं। उनमें से किम वेदंता किट्टिम खवेदी यह पहली मूल गाथा है। इसकी एक भाष्य गाथा है, वह कौन सी है? परमम विदियम तदियम वेदंतो यह एक ही भाष्य गाथा है। किम वेदंतो किट्टिम खवेदी कृष्टियों की क्षपणा संबंधी इस दूसरी मूल गाथा की एक भाष्य गाथा है, वह कौन सी है? जम चावी संचुहंतो खवेदी किट्टिम यह एक ही भाष्य गाथा है, भाप्य हुआ भाष्य गाथा है। इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं ना, क्योंकि गाथाओं के नाम है और उसकी संख्या है। हाँ, उसमें से अभी मुझे थोड़ा थोड़ा भाषित होता है वो उसके दो चार शब्द की कौन सा विषय चल रहा है, परंतु अभी तो जिनका कुछ पहले पढ़ा ही नहीं है क्षपणा, तो ये तो हम बस ऐसा ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब विषय शुरू हुआ होगा तब उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जम जम खवेदी किट्टिम मिला ना हम अभी छठे लाइन में। कृष्टि की क्षपणा संबंधी इस तीसरी मूल गाथा की दस भाष्य गाथाएं हैं। वे कौन सी है? बंधो व संकमोवा इस गाथा से लेकर पश्चिम आवलियाए समऊणाए इस गाथा तक दस भाष्य गाथाएं हैं। किट्टी दो किट्टिम गुणसंकमयी, कृष्टियोंकी क्षपणा संबंधी इस चौथी मूल गाथा की दो भाष्य गाथाएं हैं, वे कौन सी है? किट्टी दो किट्टिम पुनः इस गाथा से लेकर समयूणा या पवित्ठा आवलिया इस गाथा तक दो भाष्य गाथाएं हैं। इस प्रकार चत्तारीय खवणाएं इस गाथांश का व्याख्यान समाप्त हुआ। एक ही गाथा में से उसके एक एक अंश को बता रहे हैं। पूर्वोक्त दो गाथाओं के द्वारा कही गई समस्त भाष्य गाथाओं की संख्या की यह संदृष्टि मालजनों को समझाने के लिए इस प्रकार स्थापित करनी चाहिए। पहली पांच, फिर तीन, दो और छः, चार, तीन तीन, एक चार तीन दो, फिर पांच, एक और छः, तीन चार, दो चार चार, दो पांच, एक एक, दस और दो। एक का रस होती कहा था ना उन्होंने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दह। इन समस्त भाष्य गाथाओं का जोड़ 86 होता है, 86। इन 86 गाथाओं में चारित्र मोह क्षपणा संबंधी पूर्वोक्त 28 गाथाओं के मिला देने पर चारित्र मोह की क्षपणा नामक अर्थाधिकार से संबंध रखने वाली कुल गाथाएं 114 होती हैं। इन 114 गाथाओं में पहले के 14 अधिकार संबंधी 64 गाथाओं के मिला देने पर कुल 178 गाथाएं होती हैं। ये 114 और पहले वाली, हाँ, गिनती में उनकी स्थापना 178 होती है। अब कषाय प्रावृत्त के 15 अर्थाधिकारों का प्ररूपण करने के लिए गुणधर भट्टारक दो सूत्र गाथाएं कहते हैं। पिज्ज दोष विहत्ति ठिदि अनुभागे च बंधगे चेय वेद गौव जोगे विय चौठान व्यंजने चेय सम्मत देश विरई संजम वसामणा च खवणा च दंसन चरित मोहे अद्धा परिमाण निदेशो। ये वेदक ही पढ़ा, ये किसके नाम है? हाँ, 15 अर्थाधिकार जो हमने पढ़े थे ना, उसी को फिर गाथाओं में एक साथ बता दिया। देखो, दर्शन मोह और चारित्र मोह के विषय में पेज दोष विभक्ति, स्थिति विभक्ति कॉमा लगाना, अनुभाग विभक्ति, अकर्मबंध की अपेक्षा बंधक और कर्मबंध की अपेक्षा बंधक, जिसको बंधक और संक्रमण कहा था। फिर छठे नंबर का वेदक, फिर उपयोग, चतुस्थान, व्यंजन, दर्शन मोह की उपशामना, दर्शन मोह की क्षपणा, 12वें नंबर पर देश विरति, फिर संयम, चारित्र मोह की उपशामना और चारित्र मोह की क्षपणा, 15 हो गए। ये 15 अर्थाधिकार होते हैं तथा इन सभी अधिकारों में अद्धा परिमाण का निर्देश करना चाहिए। शंका, उन्होंने स्वयं ऐसे 15 बताकर ये बता दिया। इस अर्थाधिकार से इतनी इतनी गाथाएं संबंध रखती है, इस प्रकार प्ररूपण करने से ही 15 अर्थाधिकारों का ज्ञान हो जाता है। पहले बता चुके ना, इस अर्थाधिकार में इतनी गाथा, इस अर्थाधिकार में इतनी गाथा, तो अर्थाधिकारों के नाम तो आ चुके थे। फिर इन दो गाथाओं के द्वारा उनकी प्ररूपणा किस लिए की गई है, तो ये फिर दो गाथाएं वेस्ट क्यों की, ऐसे कहते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि इन दोनों सूत्र गाथाओं के अभाव में इन्हीं दोनों गाथाओं की वृत्ति रूप से स्थित उन संबंध गाथाओं की प्रवृत्ति मानने में विरोध आता है। अर्थात पहले जो गाथा कह आए हैं, जिनमें अमुक अमुक अधिकार से संबंध रखने वाली गाथाओं का निर्देश किया है, वे गाथाएं इन्हीं दो गाथाओं की वृत्ति गाथाएं हैं, अतः इनके बिना उनका कथन बन नहीं सकता। वहाँ जो बताया था वो इन्हीं का एक्सप्लेनेशन था उसमें, इनके बिना वो नहीं हो सकता है। इसलिए इन दो गाथाओं के द्वारा 15 अर्थाधिकारों का निर्देश किया है, यानी उसका कथन किया गया है। 15 अर्थाधिकार कौन कौन से है वह इन अर्थाधिकारों के द्वारा बताया। अब इन दोनों गाथाओं का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है। 15 अर्थाधिकारों में से पहली गाथा के पूर्वार्ध में जिस प्रकार 5 अर्थाधिकार होते हैं, उस प्रकार उनका पहले ही प्ररूपण कर आए हैं, इसलिए यहाँ उनका प्ररूपण नहीं करते हैं। उदय और उदीर्णा इन दोनों को ग्रहण करके वेदक नाम का एक ही अर्थाधिकार लिया है। क्या कहते हैं? ये पहले 5 अर्थाधिकार में तो बहुत विस्तार से वर्णन आया था, अभी आगे के अर्थाधिकारों की बात करेंगे। तो वेदक नाम का जो 6 अर्थाधिकार है उसमें उदय और उदीर्णा इन दोनों की बात है, जो हमने प्रस्तावना से पढ़ा था, कल पढ़ा था ना वहां से। हाँ, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, 44 वेदगम्यदु इस वचन से जाना जाता है कि ये दोनों एक है। उपयोग नामक एक 7वां अर्थाधिकार है, ये प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। वहां पर फिर शंका, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, उपयोग अर्थाधिकार में 7 गाथाएं हैं, इस वचन से जाना जाता है। चतुस्थान नामक एक 8वां अर्थाधिकार है, यह कैसे जाना जाता है? हाँ, तो कहते हैं चतुस्थान नामक समाधान घान हुआ। चतुस्थान नामक अर्थाधिकार में कभी कभी इनका ध बराबर नहीं दिखता है, 16 गाथाएं हैं, इस वचन से जाना जाता है। व्यंजन नामक 9वां अर्थाधिकार है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, व्यंजन नामक अर्थाधिकार में 5 गाथाएं हैं, इस कथन से जाना जाता है। सम्मत्त इस पद से यहाँ पर दर्शन मोह की उपशामना और दर्शन मोह की क्षपना, ये दो अर्थाधिकार लिए गए हैं। यह कैसे जाना जाता है? समाधान, चूंकि दर्शन मोह की उपशामना और दर्शन मोह की क्षपना से संबंध रखने वाली गाथाएं पृथक पृथक पाई जाती है, इससे जाना जाता है। देश विरय और संयम इन दोनों पदों से भी 2 अर्थाधिकार लेना चाहिए। यह कैसे जाना जाता है? यह पहले इसकी चर्चा हुई थी ना, इसलिए हम केवल पढ़ रहे हैं अभी। 2 से भी 1 का गाहा अर्थात देश विरति और संयम इन दोनों अर्थाधिकारों में 1 गाथा पाई जाती है, इस वचन से जाना जाता है कि ये 2 अधिकार है। चरित्र मोह इस वचन के अनुसार यहाँ चारित्र मोह की उपशामना और चारित्र मोह की क्षपना, ये 2 अर्थाधिकार हैं। यह कैसे जाना जाता है? समाधान, उपशामना में 8 गाथाएं हैं और प्रस्थापक में 4 गाथाएं हैं, इस वचन से जाना जाता है। दंशन चरित्र मोह इस पद में जिसलिए विषय में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए पूर्वोक्त 15 अर्थाधिकार दर्शन मोह और चरित्र मोह के विषय में होते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ये सारे जो 15 अर्थाधिकार है दर्शन और चरित्र मोह संबंधी ये बातें हैं। इस कथन से इस कषाय प्रावृत में शेष 7 कर्मों की प्ररूपणा नहीं है, यह कथन किया गया है। उक्त सभी अर्थाधिकारों में अद्धा परिमाण का निर्देश कर लेना चाहिए। परिमाण बराबर करना, या दिख रहा है, अन्यथा स्वतंत्र रूप से उसके ज्ञान कराने का कोई दूसरा उपाय नहीं जाना पाया जाता। किंतु अद्धा परिमाण निर्देश स्वतंत्र अर्थाधिकार नहीं है। इस संबंधी भी चर्चा बहुत हुई थी पहले कि सभी अधिकारों में ये गर्भित है, वहां पर उसका प्रमाण आदि बताया जाएगा। क्योंकि कंठी के सभी मुक्ता फलों में जिस प्रकार सूत्र पाया जाता है, ये समझ में आता है? कंठी क्या होता है? गले का हार, हाँ, माला। उसके मुक्ता फले ने मोती, उनमें सूत्र ने डोरा पाया जाता है। उसी प्रकार समस्त अर्थाधिकारों में अद्धा परिमाण का निर्देश ने कथन पाया जाता है, शेष कथन सुगम है। विशेषार्थ, यद्यपि गुणधर भट्टारक ने 15 अर्थाधिकारों के नामों का निर्देश करने वाली पूर्वोक्त दो गाथाओं के अंत में अद्धा परिमाण निर्देशो यह कहकर अद्धा परिमाण निर्देश का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया है, पर जिन 6 गाथाओं द्वारा इसका वर्णन किया गया है वे 180 गाथाओं में सम्मिलित नहीं है। उन्होंने जो स्वयं 180 बताई उसमें ये मिलाया नहीं है। अतः प्रतीत होता है अद्धा परिमाण निर्देश नाम का 15वां हा के बदले हवा करना, 15वां स्वतंत्र अधिकार न होकर कंठी के सभी मुक्ता फलों में पिरोए गए डोरे के समान 15 अर्थाधिकारों के संबंध रखने वाला साधारण अधिकार है। यही कारण है कि वीरसेन स्वामी ने इसको 15वां अर्थाधिकार नहीं बताया है, किंतु 15 अर्थाधिकारों में उपयोगी पड़ने वाला अधिकार बताया है। मालूम होता है कि गुणधर आचार्य की भी यही दृष्टि रही होगी, इसलिए उन्होंने 180 गाथाओं में इन 6 गाथाओं को नहीं गिनाया है। अब 15 अर्थाधिकारों के नाम निर्देश से संबंध रखने वाली इन 2 सूत्र गाथाओं को पहले की 178 गाथाओं में मिला देने पर 180 गाथाएं होती हैं। उनका प्रमाण गिनती में 180 होता है। इनके सिवा जो 12 संबंध गाथाएं अद्धा परिमाण का निर्देश करने के लिए कही गई 6 गाथाएं तथा प्रकृति संक्रम में आई संकम वक्कम विही इस गाथा से लेकर संक्रम नामक अधिकार अर्थाधिकार की 35 वृत्ति गाथाएं पाई जाती है, उन्हें पहले की 180 गाथाओं में मिला देने पर गुणधर आचार्य के मुख कमल से निकली हुई, ये उन्हीं की है, हम 233 बताते हैं ना, समस्त गाथाओं का जोड़ 233 होता है। अब इसी को विशेषार्थ में बताते हैं। यद्यपि गुणधर आचार्य ने गाहा सदे असीदे इस पद के द्वारा कषाय प्रावृत को 180 गाथाओं द्वारा कहने की प्रतिज्ञा की है, फिर भी समस्त कषाय प्रावृत में 233 गाथाएं पाई जाती हैं, जिनका निर्देश जय धौलाकार ने अनंतर पूर्वक किया है, इसके पहले किया ही है। जय धौलाकार का कहना है कि प्रारंभ में आई हुई 15 अधिकारों में गाथाओं का विभाग करने वाली 12 संबंध गाथाएं किसका कितना काल है, इस प्रकार दर्शनोपयोग आदि के काल के अल्प बहुत्व के संबंध से आई हुई अद्धा परिमाण का निर्देश करने वाली 6 गाथाएं काल कितना है, अध्याय ने काल में निकल बताया काल का प्रमाण, यानी पहली 12 गाथाएं तो संबंध बताने वाली हुए। अभी हमने कितनी लास्ट गाथा कौन सी पढ़ी, 13-14, वहां तो नाम बताए परंतु कहां कितने कौन सी से क्या है वो तो संबंध बताने वाली 12 गाथे, वो उसमें तो मूल विषय तो कुछ नहीं आया है, वो तो इंडेक्स वाली थी ना, हाँ तो वो 12। फिर अभी हमने दे अद्धा प्रमाण वाली छह गाथा तथा 35 संक्रम वृत्ति गाथा, इस प्रकार 53 गाथाएं भी गुणधर आचार्य कृत है। ये समझ में आई क्या बात हो रही है? संबंध गाथाएं ने आगे आने वाला विषय उन्होंने 12 गाथाओं में समझाया, उसके अलावा 180 और है ना, उन्होंने तो उसमें विषय डाला है। तो फिर काल वगैरह का बताने वाले, अद्धा परिमाण वगैरह निर्देश करने वाली 6 गाथाएं, और संक्रम वृत्ति वगैरह उसकी 35 और होती है। ऐसे 53 गाथाएं भी गुणधर आचार्य कृत है, अतः कुल गाथाओं का जोड़ 233 होता है। हमें भी प्रश्न था ना, स्वयं 180 बता रहे हैं और 233 है, तो उन्होंने जो वर्णन किया 180 मैंने बनाई है, उसकी इतनी, उसकी उतनी है, वो तो संबंध बताने वाली गाथा है, वो मूल विषय की गाथाएं नहीं है। विषय की गाथाएं इतनी 180 है और बाकी कितनी उसके समझाने आदि की है। जिसका खुलासा आगे कोष्टक देकर दिया गया है, उसमें से पहले 15 अर्थाधिकारों में जो 178 गाथाएं आई है उन्हें दिखाने वाला कोष्टक देते हैं। ये मूल अधिकार और उसका कोष्टक बताए हैं। 1 से 5 प्रारंभ के 5 अर्थाधिकार, मूल गाथा 3, 6 वेदक वाला मूल गाथा 4, उपयोग वाली 7, चतुस्थान की 16, व्यंजन की 5, दर्शमोपशमना 15, दर्शमोक्षपना 5, संयमा संयम लब्धि और चारित्र लब्धि की मिलकर 1, चारित्र चात्री हुआ है, चारित्र चाहिए, चारित्र मोहोपशमना 8, चारित्र मोहक्षपना की 28। यह 28 कैसी होती है उसको भी बताया उन्होंने राइट साइड में। प्रस्थापक की 4, संक्रामक की 4, अपवर्तना की 3, कृष्टिकरण की 11, कृष्टिक्षपणा की 4, क्षीण मोह की 1 और संग्रहणी की 1। इस तरह से जो मूल गाथा है 92 बताई यहाँ पर, और उसमें हर एक में भाष्य गाथाएं कितनी किसकी है वो 86 ली, 178 हो गई ना वो। इस प्रकार 15 अर्थाधिकारों की मूल गाथाओं का जोड़ 92 है, और इनमें से चारित्र मोह की क्षपणा से संबंध रखने वाली 28 गाथाओं में से 21 गाथाओं की भाष्य गाथाओं का जोड़ 86 है। इस प्रकार ये समस्त गाथाएं 178 होती है। तथा प्रारंभ में 15 अर्थाधिकारों का नाम निर्देश करने वाली, ये कौन सी गाथा नंबर है, 13 और 14 अभी जो हमने पढ़ी, क्योंकि पहली 12 तो उन्होंने क्या बताई, वो संबंध गाथा बताया, और नाम निर्देश करने वाली 2 गाथा है, और आगे वाला 178 सारा, उसमें से 92 वो मूल गाथाएं हैं और वो भाष्य गाथाओं की टोटल वो 86 हो जाती है। उन सहित 180 गाथाएं हो जाती हैं। कषाय प्रावृत में पूर्वोक्त 180 गाथाओं के अतिरिक्त 12 संबंध गाथाएं, अद्धा परिमाण, परिरी हुआ है परिमाण, एक री निकाल देना, निर्देश करने वाली 6 गाथाएं, 35 संक्रम वृत्ति गाथाएं, इस प्रकार 53 गाथाएं और पाई जाती है, अतः कुल गाथाओं का जोड़ 233 होता है। जयधवला में क्रम से 12 संबंध गाथाओं चाहिए, था रह गया। 15 अर्थाधिकारों का निर्देश करने वाली 2 सूत्र गाथाओं, अद्धा परिमाण का निर्देश करने वाली 6 गाथाओं, प्रारंभ के 5 अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाली 3 गाथा सूत्र गाथाओं, अभी जो हमने वहाँ पढ़ा टेबल में, 35 संक्रम वृत्ति संबंधी गाथाओं, और शेष 10 अर्थाधिकारों के कथन करने वाले 175 सूत्र गाथाओं का कथन किया है। चारित्र मोह के क्षपणा प्रकरण में जिन जिन सूत्र गाथाओं की भाष्य गाथाएं हैं वे उन सूत्र गाथाओं के व्याख्यान करते समय आती गई है, जिसका ज्ञान पूर्व के कोष्टक से हो जाता है। अब यहीं रुकेंगे हम, ये कोष्टक कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई,